गाथा नंबर 332 से यह प्रकरण प्रारंभ हुआ, 344 तक यह प्रकरण चलेगा, 332 से लेकर 344वीं गाथा तक कुल 13 गाथाएं हैं। लगता तो ऐसा है इस प्रवचन में 13 गाथाएं, हम तो 13 प्रवचन में ही गाथाएं सुनते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो दमवारा प्रवचन करते हैं तो एक ही गाथा लेते हैं, तो 12-13 प्रवचन में एक गाथा, और एक गाथा में एक प्रवचन में 13 गाथाएं है। कुछ नहीं है, कुछ कठिन बात नहीं है, क्योंकि एक एक गाथा में बस दो दो लाइन ही समझ लीजिए है। और समझना क्या है, जो हमने समझ रखी है वो तो बताए मतलब हमने जो हमारी अज्ञानता से समझ रखा है, अनादि काल से जो हमारी मिथ्या बुद्धि से जो बात समझी हुई है वो सारी बातें लिखी गाथाओं में। तो ईश्वर में यदि देते हैं तो आचार्य कुंडल की गाथा तो 2-3 गाथाएं हैं, बाकी तो हमारी बातों को लिखा है। इसलिए समझना कठिन नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही उन सब बातों को माने बैठे हैं। क्या क्या बातें कही। देखो आप 332 नंबर गाथा, बत्तीस नंबर गाथा में कहा कर्म अज्ञानी करता है और कर्म ही ज्ञानी करता है। देखो भाई ऐसा ही है, अपन अभी नक्षत्र से अज्ञानी की मान्यता और जो बात यहाँ कही है ना जिसके पोषण में गाथा में वही बात कहता हूँ। जब निषेध की बात करेंगे तो निषेध की बात करूंगा। अभी ये भूल जाओ कि 340 नंबर गाथा में आगे जाकर के कुछ कहेंगे। अभी तो ये जो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कर्म एक जीव को ज्ञानी करता है और कर्म अज्ञानी करता है। बोलो अनुभव में आती है कि नहीं ये बात? ये बात अनुभव में आती है कि नहीं? अरे ये अनुभव गलत है, ये अनुभव गलत है। लेकिन अनुभव में तो यही आ रहा है हमारे को, बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे, एकदम पता नहीं क्या हुआ, सर पे कुछ चोट पड़ गई और सब खत्म हो गया। अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो हमने सोचा क्या हो गया, किसने कर दिया, ज्ञानी का भरोसा क्या कहूँगा, सेवक्षण ज्ञान का क्या भरोसा। ज्ञान वाली धर्म का चित्र उठे आ जाए तो एकदम सारा इलाज की हुई बात भूल जाता है। और ज्ञानवर्णी कर्म का उदय मंद हो और श्रेयोक्षम तीव्र हो तो ये जीव समझदार हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, विद्वान हो जाता है। श्रेयोक्षम में जो बड़े बड़े पंडित दिखते हैं इनके पास में कम थोड़ी, श्रेयोक्षम तो बहुत है। देखो अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि हमने ज्ञानी होने का आधार कर्म के ऊपर छोड़ा है। कर्म ज्ञानी करता है और कर्म अज्ञानी करता है। ये जो ज्ञानी और अज्ञानी की जो बात कही है, ये सेवोक्षम ज्ञान का बढ़ना और सेवोक्षम ज्ञान का घटना, तम्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान की बात नहीं है। क्योंकि तम्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का संबंध ज्ञान के घटने बढ़ने से नहीं है। तम्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का संबंध ज्ञान की निर्मलता से है, उसकी पवित्रता से है, ज्ञान के लक्ष्य से है। ज्ञान किसका लक्ष्य कर रहा है, ज्ञान किसका अवलंबन ले रहा है। यदि हमारे ज्ञान ने पर का अवलंबन दिया तो बोले क्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, खोटा ज्ञान। और ज्ञान ने गैर का अवलंबन दिया तो सम्य ज्ञान। बराबर है, कौन से ज्ञान को ज्ञान कहे अपन? जिस ज्ञान ने जायक का अवलंबन लिया वो सम्य ज्ञान, और जिस ज्ञान ने पर का अवलंबन लिया वो खोटा ज्ञान। अब बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। क्या मतलब है बढ़ाने से? ऐसे ज्ञान बढ़ा बढ़ा करके 1100 पूर्व तक का ज्ञान हो गया, नतीजा कुछ नहीं निकला, ये अनंत संसार। तो हमें ऐसे लग रहा है साहब, ये बात को देखो सच में अपने हाथ में नहीं, हमने आपसे कहा कि ये बात याद करो। हमने कहा क्या करें, लेकिन मर के पति है लेकिन याद नहीं होगी। दो चार घंटा आप मानोगे नहीं, आपने चार लाइनें बताई थी, हमने चार घंटा बहुत मेहनत की उसको याद करने के लिए, और हमें ऐसा लगा याद भी हो गई। अब आप पूछते हो तो सुना नहीं पाते, आप पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा आप ही बताओ क्या हो गया। बोले पंडित जी आप तो करना भी लोग समझते हो, अभी जाना बड़े कर्म का ऐसा उदय है, सेव चमने बात याद आ जाती है और उदय तीव्र हो जाए तो बात दिमाग से निकल जाती है, हम क्या करें। ये बात 332 नंबर भाषा में थी, ठीक है, पहली लाइन में। और दूसरी लाइन में कहा कर्म सुलाते हैं और कर्म जगाते हैं, तो क्या इस बात अलग थी? अभी तो जाना मुझे निद्रा दर्शना वर्णी कर्म का सेवोक्षम सबसे खुला है, अभी तो किसी के निद्रा का काम नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आ जाए तो कारण कौन? हमें लगता है दर्शनावरणी कर्म का कारण है, उसकी वजह से निद्रा आती। फिर कहा 333 नंबर गाथा आ गई, कर्म दुखी करते हैं और कर्म सुखी करते हैं। मूल गाथा है कौन कौन स्वामी की, कर्म दुखी करते हैं और कर्म सुखी करते हैं। बोलो कौन कौन स्वामी की बात मानते हो कि नहीं मानते? अनादि काल से मान रहे हैं हमको 332 नंबर की बात, 333 नंबर की बात, 334 नंबर की बात है। आचार्यों की बात मान रहे हैं अपन, ये आचार्य अपनी बात कही नहीं है, ये अज्ञानी की बात कह रहे हैं, ये सांख्य दर्शन वाले की बात कह रहे हैं। कर्म सुखी दुखी करता है, सच में ऐसा ही लगता है हमारे को, लेकिन सच बतलाओ वस्तु स्थिति क्या है? कर्म सुखी से दुखी करता है, कर सकता है? वो जो लाइन बाबू जी ने लिख दी, जड़ कर्म घुमाता है उनको नित्या भ्रांति नहीं मेरी, वो ये इसी के तो लाइन है, कर्म उन्हें दुखी करता है, कर्म दुखी करता है, कर्म सुनाता है, कर्म जगाता है, कर्म ज्ञानी करता है, कर्म ज्ञानी करता है। हमें ऐसा लगता है हमने हमारी पूरी बागडोर कर्म के हाथ में फूट रखी है। आप क्यों दुखी हो? क्या करें साहब, ऐसा कर्म का हो गया है, बेटे का योग हो गया, 22 साल का बेटा मर गया एक्सीडेंट में, बोलो किसने मारा, क्या हुआ, आपके ऊपर क्या बीत रही है, ऐसी परिस्थिति आपके पास में क्यों बनी, आपके पाप का हो गया, कितने दुखी हो, क्या करें साहब, पाप का हो गया है, दुखी हो गई। ये बताना चाह रहे हैं ये मान्यता मिथ्या मान्यता है। सारे जगत में वर्तमान युग की शैली में रहेगी, पाप पुण्य की उदय की बात करेगा, कर्णानुयोग की शैली भी इसी प्रकार की होगी, पाप पर पुण्य कर्म के उदय की बात करेगी। द्रव्यानुयोग इसीलिए महान है क्योंकि ये कहता है कि पाप कर्म का उदय जिनको दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये द्रव्यानुयोग पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और बाकी दूसरे अनुयोग कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं। बोलो कंट्रोल अपने हाथ में रखना है कि दूसरे के हाथ में देना है? कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? आपने कंट्रोल यदि दूसरे के हाथ में सौंप दिया तो बस फिर तो आप वो नचाता रहेगा, आप नाचते रहोगे, कर्म नचाता है हमारे को, हम नाचते, हम क्या करें, फिर क्या करेंगे हमसे झूठने के लिए? एक कर्मों से माला फेरो, कर्मों को आगे चलाओ, एक कर्म प्लीज छोड़ दे यार, बहुत समय हो गया दुखी हो रहा हूँ, अब कर्म को कहूंगी वो जोड़ेगा ना जोड़ेगा। अरे भैया कंट्रोल कर्म के हाथ में नहीं है, कंट्रोल के हाथ में है और तू मानता ही नहीं कि कर्म के हाथ में, कर्म दहन निदान। तो जिन लोगों के कर्म दहन होते हैं वो कर्म दहन निदान करते नहीं है और जो निदान कर रहे होते हैं उनके कर्मों का दहन होता नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है। कितनी बार कर्म दहन निदान करें, मैंने करा है 2-4 बार, लेकिन मुझे पता है ये भी कर्म दहन नहीं हुआ, करने वालों के तो होता ही नहीं है, कराने वालों के भी नहीं होता, और कर्म दहन के नाम पर कर्म बढ़ते और है। ये धूप आगन में देने से कर्मों को भूख जलाएगी? बिल्कुल नहीं जलाएगी। लोग तो इसलिए इस कराते कि खूब जलाएगी। खैर देखो आप यहाँ पे कहते हैं चल रहे हैं कि पाप कर्म का उदय मुझे दुखी करने में समर्थ करेंगे। देखो पाप कर्म का उदय संयोगों पर आता है, पाप कर्म का उदय आत्मा पर नहीं होता, पाप कर्म का उदय परिस्थितियों पर आता है, पाप कर्म का उदय निकाली जाए से नहीं आता, पाप कर्म के उदय में आत्मा के साथ क्या हो रहा है बताओ, टुकड़े हो जाएंगे, ज्ञान मिल जाएगा, प्रदेश खंडित हो जाएंगे, पाप कर्म के उदय में आत्मा का क्या होगा? अगर आपको पुण्य का उदय पसंद आता है तो पुण्य का उदय आत्मा क्या भला कर लेगा? पुण्य के उदय से कमरे ज्ञान होता है, पुण्य के उदय से कमरे दर्शन होता है, पुण्य के उदय से मोक्ष मार्ग मिलता है, तो पुण्य के उदय से रोटियां तो मिलती है, पुण्य के उदय से रोटियां नहीं मिलती, पुण्य के उदय से मिलती है रोटियां, तो इसलिए आपको रोटियां चाहिए, रोटियों का आनंद चाहिए या आत्मा का आनंद चाहिए? आप नहीं मालूम पुण्य पाप कर्म के उदय की परिस्थितियां कैसी होती है? अभी सब बराबर बराबर कह रहे हो, हर जगह पर देखा उदय पाप का उदय दोनों बराबर है, पीछे कह चुके हैं पुण्य पाप एक अंधकार में, पुण्य पाप अधिकार में, लोह देवी और पहले से देवी है, ऐसा ही सबका आप मानते रहेगा, पुण्य और पाप आपको दोनों एक समान देखते हैं, लोहे की देवी और सोने की देवी, कौन सी देवी उसे बांधे बोले, सफल कौन सी रेडियो से बांधे, ये से नहीं, क्या बात कर रहे हैं, सोने वाली तो बहुत अच्छी चमकदार नहीं, हाँ वो पाप अधिकार समाप्त लिखा है, हाँ 427 लिखा है सोना बनाने की, हाँ मालूम है मूल गाता नहीं थी, अरे की चर्चा नहीं चल रही है, बात तो ये चल रही है कौन से बंधन में बांधा जाए, अभी अभी आपको बनाने की किसी के चक्कर में भी नहीं उलझ रहा, बना बनाया है मेरे पास, बोलो बनाए क्या बनाएगा, कौन सा वाणी बच्चा करेगा, क्या करेगा, मेरे पास सब बिल्कुल तैयार है। बोलो लोहे की से बन रहा है या सोने वाली से बन रहा है, बोलो दोनों से ही बन रहा है पक्का, सबको एक ही स्वर में। एक बात सुन लेना आगे क्या कहने वाला हूँ, जिसको जिससे बांधेंगे वो उसकी हो जाएगी। बोलो आप किससे बन रहा है, अच्छा ऐसा है कि तेरे काम करो ये दोनों ही एक जैसी है तो सोने से बांध लो। भाई साहब बंधन है वो कष्ट कितना चाहिए हमारे को, उससे पीड़ा दिखनी चाहिए, उससे पीड़ा नहीं दिखती है, उससे प्रॉब्लम नहीं दिखती है हमारे को। पुण्य की वजह से दुनिया में सारे काम होते हुए दिखाई देते हैं, पुण्य की वजह से सब अनुकूलताएं दिखती रहती है, पुण्य की वजह से जगत में प्रशंसा होती है, पुण्य की वजह से घर में चलती है, परिवार में चलती है, आप पड़ोस में चलती है, समाज में चलती है आपकी, पुण्य की वजह से लोग आपकी सुनते हैं, लोग आपकी मानते हैं, पुण्य का उदय होगा तो पुण्य की वजह से कभी ठीक रहती है, पुण्य की वजह से बीमारी नहीं आएगी, पुण्य की वजह से सब अनुकूलताएं मिलेगी, पुण्य की वजह से गाड़ी होगी, बंगला होगा, आपकी जैसी आवाज निकलेगी उसके अनुसार काम होगा पुण्य की वजह से। बोलो चाहिए या नहीं, और पाप की वजह से बताए क्या है, आप जो कहोगे वो काम नहीं होगा, आपके बच्चे सामने जवाब दे रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को ये दोनों परिस्थितियां पाप की वजह से पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज दिख रही है, घुटनों की प्रॉब्लम है, कुछ बैठ नहीं सकता है पाप दर्द की वजह से, और पुण्य की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो क्या चाहिए दोनों में से, ये सारी प्रॉब्लम आ गए माथे से। अभी ये कह रहे हैं यदि तेरे को ये दोनों बातें समान दिखती हो तब तो तू समझदार, और दोनों बातें तेरे को समान नहीं दिखती तो तू मूर्ख। यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं उन दोनों परिस्थितियों का कारण तेरे को एक कर्म दिखाई देता हो कि मैं इतना सुखी हुआ। अरे साहब तीन दिन तो इतने अच्छे जीते ना, आपको कह नहीं सकता पंडित जी क्या पुण्य का अवसर आ गया था, तीन दिन तो इतना अच्छा पुण्य का अवसर रहा, लेकिन चौथे दिन पाप के अवसर ने सब पानी फेंक दिया उसके ऊपर। इसका मतलब तेरे को ऐसा लग रहा है कि जो सुख हो रहा था वो पुण्य की वजह से हो रहा था, और जो दुख हो रहा था वो पाप की वजह से हो रहा था। इसका मतलब तुझे सुखी करने वाला पुण्य है और दुखी करने वाला पाप है, ये लगता है हमारे को। फिर तो यही कर रहे मिलेगा अपन, ऐसा महसूस कर रहे हैं अपन कि पुण्य का वजह से हम सुखी होते हैं, देखो मजा आता है, अभी iPhone 7 हाथ में हो, अच्छी मर्सिडीज हो, गाड़ी हो अपने पास में, सारी फैसिलिटी हो, तो अपने चेहरा खेचा मजा आ गया, और एकदम कोई समझ लो ऐसा हो कि कोई ग्राहक आ गया और बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा और बिल्कुल सौदा पक्का करके जा रहा है, एवं ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल अभी तो दो चार बात को बिल्कुल तुरंत एकदम कुछ भी नहीं करना है अपने को, सिर्फ उसने हाँ कही और इधर 5 लाख अपने डिपॉजिट हो गए, तो कहना चलता है कि मजा है, तो ये मजा कहीं जाए सुनने की वजह का, और इसलिए हम प्रसन्न थे, घर जा करके बतलाया, पापा को फोन किया, और इतनी देर में बैक कॉल आ गया उसका कि नहीं नहीं कहते। अब क्या हुआ समझे, तो उदय बदल गया, तो उदय बदल गया तो दुखी हो गया, तो किस वजह से दुखी हुआ, पाप की उदय की वजह से, और किस वजह से प्रसन्न था, पुण्य की उदय की वजह से। सारा जगत ये कहता है, स्वाध्याय करने वाले अच्छे अच्छे लोग ये बात कहते हैं, अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वालों का ये जवाब सुन लोगे आप, किसी भी व्यक्ति के दुखी होने की चर्चा करोगे तो निकल करके यही बात सामने आएगी कि पाप के वजह से दुखी है। गुरुदेव को पढ़ने वालों की बात कह रहा हूँ मैं, स्वाध्याय रोज जिनसे देखा हूँ, मैं कहता हूँ हमेशा बात, एक बच्चा अपनी माँ के साथ में जा रहा था रोड पर, और रास्ते में जाते जाते भिखारी दिखा, बालक ने कहीं भिखारी कभी देखा नहीं था, 4-5 साल का बालक था, 8 साल का होगा, 10 साल का होगा, छोटा सा छोटा बच्चा था, और वो जो भिखारी था वो रो रहा था, आंखों में आंसू बह रहे थे, खाने के लिए दे पड़ रहा था, और हाथ में से रो रहा था, फटे हाल था, कपड़े फटे थे, फिर हाथ पांव टूटे होंगे, काला कलर का दिख रहा था, बहुत बहुत उसकी हालत ऐसी खराब दिख रही थी, रो रहा था, दुखी हो रहा था, बहुत पीड़ित था। तो बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये कुछ हो रहा है, इससे क्या कर रहे? तो बोलो आप यदि उसकी माँ है, समझो आपका बच्चा आपके साथ में जा रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे? किस वजह से पूछिए? दो क्या जवाब हो सकते? एक जवाब तो ये बेटा ये भिखारी है, उनको खाने को नहीं मिलता, बेटा ये बहुत क्या करें, ऐसा ही है, बेचारे के पास नहीं है इसलिए दुखी है। एक तो ये जवाब सीधा सीधा था, बच्चे को जवाब दे दिया, बेचारा दुखी है। दूसरा जवाब क्या हो सकता है? थोड़े से पढ़े लिखे समझदार हो गए तो क्या जवाब देंगे? पाप का हो गया बेटा, पाप के वजह में प्रॉब्लम, पाप की वजह से दुखी है, पर कोई भरोसा नहीं है, पाप कर्म का किसी का भी आ जाता है, करोड़ से का आदमी में कितनी देर लगती है, तो करोड़पति और कहा हट गया तो क्या हो गया? अब कितना टाइम लगा उसने, उन्हें बदल के देर नहीं लगती है, उन्हें कहा के काम पहुंचा देता है, मतलब ऐसी बहुत परिस्थितियां होती है ना दुनिया में। मैं कहता हूँ एक बालक ने आपके घर में जन्म लिया, करोड़ों अरबों की संपत्ति है आपके पास में, उसने आपके घर में जन्म लिया तो अरबपति हो ना, जन्म होते अपने आप ही जन्म से है ना, कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं कहती है कमाई, कुछ नहीं बिजनेस किया उसने, जन्म से हो गया वो करोड़पति अरबपति हो गया। अब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में सब जा रहे हैं गाड़ी से और हाईवे पर रोड एक्सीडेंट हो गया, छह महीने का बालक है, दुर्घटना में सबकी डेथ हो गई और गाड़ी भी खत्म हो गई और वो छह महीने का बच्चा बच गया। अब उसका क्या होगा? मतलब उठेगा अब कहा जाएगा वो अरबपति है तो चलिए अब कौन जाने कौन परिवार का, क्या पता कौन सी गाड़ी थी, क्या पता कहाँ से आए थे, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, जो बोलने वाले थे वो सब खत्म हो गए। अब बच्चा है संपन्न परिवार का तो दिखता है, संपन्न कौन कहा क्या, कौन से नगर से, कौन से गांव से, क्या करे, कुछ ज्यादा पता नहीं है, अभी मामले के अलावा कोई उपाय दिखता है? अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ दे, क्या क्या उपाय दिखता है बताओ? उन्हें बदल देना, उन्हें बदल के कहा देर लगती है, क्या मामले में उन्हें बदल जाता है, अच्छे से बुरा उदय हो गया। अब कुल कुल स्वामी ये कह रहे हैं कि उदय जब अच्छा अच्छा चल रहा था तो तुझे अच्छा लग रहा था, तुझे लग रहा था कार्य कर रहा है, सब क्या करें, पाप का मुझे उदय ने कहां से कहां पहुंचा दिया, पाप का बंदा उदय ये बिचारी दुखी क्यों है, पाप कर्म से लेकर दुखी ऐसा ही गुरुदेव के पीछे क्या कहेंगे, गुरुदेव क्या जवाब देंगे, किस वजह से दुखी है? अरे अपने स्वरूप को लेकर ज्ञान नहीं की वजह से दुखी है, ये परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, इसका मतलब आपने परिस्थिति को दुख का कारण माना, आपने कर्म को दुख का कारण माना, आपने संयोगों को दुख का कारण माना, संयोग को दुख का कारण माने ये तो मूर्ख लोग सारी दुनिया में, और कर्म के उदय को दुख का कारण माने ये स्वाध्याय करके भी मूर्खता। अरे कह रहे संयोग तो सुख दुख का कारण होता ही नहीं है, कर्म का उदय भी सुख दुख का कारण नहीं होता, और यदि तू कर्म के उदय को सुख दुख का कारण मानता है तो तेरी ये मान्यता मांग से नती हो जाती है, तीन सौ तैतीस होगी, तीन सौ तैतीस की दूसरी लाइन में कहा मिस्टर व्यक्ति क्यों है दर्जन मोहनी का उदय, क्या करना अपनी चलती है, जब तक दर्जन मोहनी कर्म का उदय रहेगा तब तक ये जीव मिस्टर व्यक्ति बना रहेगा, और अगर ये नहीं क्यों है चारित्र मोहनी कर्म की वजह से, मिथ्या दृष्टि दर्शन मोहनी कर्म की वजह से, और असंयमी चारित्र मोहनी कर्म की वजह से, इतना ही नहीं कर्म ही इस जीव को भरमाते हैं, कहां से ऊर्ध्व लोक में बोलो पुण्य से बहुत सारे दिन नर्क के निवास से हो गए, पाप से कहां जाना है आपको ऊपर के नीचे बोलो ऊपर, दुनिया में कोई व्यक्ति नीचे नहीं जाना चाहता, सबको ऊपर ही जाना है, तो नीचे जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, तो कौन ले जाता है भाई साहब, तो कौन ले जाता है कर्म, इसी तीन सौ कौन सी नंबर चौंतीस, तीन सौ चौंतीस नंबर में कह रहे हैं कर्म ही इस जीव को ऊर्ध्वलोक में ले जाता है, कर्म ही मध्य लोक में ले जाता है, कर्म ही शुद्ध एक लोक में ले जाता है, अधोलोक में ले जाता है, ये कर्म ही ले जाता है। कौन सा कर्म है ऐसा? अनुपूर्वी नाम कर्म, गत्यानुपूर्वी नाम कर्म। उस नाम कर्म की वजह से ये जीव यहाँ से वहां चला जाता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर है। कौन ले जाएगा बताओ? आप कर्म का हो क्या करें, पुण्य का हो जाए आपको यहाँ ढेर लाली भेज लाता है निर्माणी करने के लिए, और पाप का हो जाए आता है तो आप बिजनेस में नहीं जाते, आप आ नहीं पाते। तो आपको यहाँ आने वाला कौन? क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने वाला हो जाए पुण्य का हो जाए, और नहीं करने वाला हो पाप का हो जाए, मेरे कर्म करता है। इस प्रकार जगत में जो कुछ भी शुभ अशुभ होता हुआ दिखाई देता है वो सब कर्म ही करते हैं। और 335 नंबर, कर्म करते हैं, कर्म ही देते हैं। आपको अच्छी संपत्ति वैभव किसने दिया? कैसा आप कर्म की वजह से मिली? चक्रवर्ती को छह विभूति किसने दी? बोले उसका उदय। आपको ये लग रहा है ना भाई, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि अपनी मान्यता मांग से मतलब जैसी दिख रही है, ऐसा ही लगता है हमारे को। देखो वो जो है ना ध्यान त्राय जी की पूजन, दस लक्षण पूजन, उत्तम क्षमा धर्म का आरोप सारा वर्णन किया ऊपर से 6-8 महीनों में, और नीचे क्या कह दिया? ये कर्म पूरब किए खोटे, कहे क्यों नहीं जिए राम। ऐसा ही है ना भाई साहब, पिछले जन्म में खोटे कर्म किए थे और वर्तमान में इनका फल मिल रहा है, तो ये चीज भोगना ही पड़ेगा। पूर्व में किए गए पाप कर्म के वजह में जिनको वर्तमान में जो होगा ही होगा, ऐसा लगता है हमारे। और कुल कुल स्वामी इसकी उल्टी बात करते हैं, ये कह रहे आने को पाप कर्म का होगा, आने को पाप कर्म का होगा, मैं उसकी तरफ देखूंगा ही, मेरे घर ही लाओगे। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा हो रही है तो कौन से कर्म चलेगा काम? जैसे किसी कर्म की वजह से बहुत प्रशंसा होती है, अच्छा किसी की बहुत निंदा हो रही है अपने किसी कर्म की वजह से, अच्छा जैसे किसी कर्म का उदय आता है तो खुश होता है, मेरी चारों तरफ मेरी प्रशंसा होगी, और अपने किसी कर्म का उदय आता है तो कैसा पाप कर्म का उदय आ गया है, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, अब क्या करें क्या करें, उनसे कितनी तकलीफ होती है अपने स्थिति कर्म की वजह से। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ बैठे हैं और कोई व्यक्ति बाहर रोड पर हमारे नाम से गालियां दे रहा है, पुण्य की वजह से पाप की वजह से, यशस्वी की वजह से अपने स्थिति कर्म की वजह से, आगे अपने स्थिति कर्म का वजह बाहर गालियां दे रहे हैं, हमें पता नहीं है तो कितनी तकलीफ है आपको? तकलीफ नहीं है? आपकी बहुत निंदा हो रही है, आपको तकलीफ नहीं है? तो तकलीफ क्यों नहीं है? तकलीफ इसलिए नहीं है कि जितना भी जो कुछ हो रहा है अपनी वजह से मैं उसकी तरफ देखता ही नहीं, या मुझे उसका पता ही नहीं है। यदि मुझे उसका पता नहीं है तो मुझे तकलीफ नहीं है। हम यही कह रहे हैं पाप कर्म का हो गया है तो उसकी तरफ देखता क्यों है? तो अपने स्वभाव को क्यों नहीं देखता है? यदि तू अपने स्वभाव को देखता है तो पाप कर्म का उदय तेरा क्या बिगाड़ देगा? वो तो पाप कर्म का उदय नहीं बिगाड़ता, अब क्या बिगाड़ेगा? पार्थनाथ का क्या बिगाड़ा? अच्छा पार्थनाथ के ऊपर जो उपसर्ग हो रहा था वो पुण्य के उदय से हो रहा था कि पाप के उदय से? जो कमर पत्थर बरसा रहा था, उदय बरसा रहा था, जो कुछ भी हो रहा था उसका ना करके वो पुण्य के उदय से हो रहा था या पाप के उदय से? आई के उदय से हो रहा था। घबरा क्यों रहे हो? सीधा सीधा पाप का उदय पुण्य के उदय के उत्तर होते हैं क्या? इतना क्यों डर रहे हो? आप प्रवचन हो गए, मैंने किसी को डाटा तो नहीं, किसी प्रवचन हो गए ऐसा कुछ नहीं। आप जनवाणी के आधार से बात करो ना भाई साहब, किसी किसी की बात है पाप का उदय का उत्तर पुण्य के उदय में नहीं होते, उत्तर तो पाप के उदय में होते हैं। इसलिए पार्थनाथ स्वामी के ऊपर जो उत्सर्ग हुआ था वो उत्सर्ग भी पाप के उदय में हुआ था, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ पाप के उदय ने उनका कितना बिगाड़ किया? उस पाप के उदय के बाद में उनका क्या बिगड़ा, उस पाप के उदय के बाद में वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुए, परिस्थिति नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। क्यों? क्योंकि पाप का उदय पाप के उदय में आ रहा है, पाप के उदय को अपना काम करने दो। जब पाप का उदय अपना काम नहीं छोड़ रहा तो मैं ज्यादा बच्चा रहने का अपना काम क्यों छोड़ू, वो अपना काम नहीं छोड़ रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है ना, तो उससे शिक्षा ले लो। कर्म के उदय से हमारे लिए शिक्षा लेनी नहीं चाहिए। कर्म का उदय अपना काम कर रहा है, वो जड़ है, वो अचेतन है, वो अपना काम कर रहा है, तो तू चेतन होकर अपना काम क्यों छोड़ रहा है, तू भी अपना काम कर, अपने स्वभाव का अवलंबन ले। ज्ञाता दृष्टा है, दृष्टि अदा उससे उसको उसका काम करने दे। नहीं कहते हो आप कभी कभी ऐसा हाथी दे दूसरे, ऐसे ऐसी बातें करते हैं ना लोग, कहने वाले कहते रहते हैं, बातें करने वाले करते रहते हैं, करने वालों को करने दो, तुम तुम्हारा काम करो। तो हमारा काम क्या है साहब, हम तो बहुत दुखी हो रहे थे, ऐसा पाप कर्म का उदय आ गया, ऐसा पाप कर्म का उदय आ गया। मैं सही कहता हूँ, दो व्यक्ति मुझे ऐसे दिखते हैं जिनके पाप कर्म के उदय की कोई कमी नहीं रही। क्या पुण्य का उदय भी अपार रहा, एक एंगल से देखो तो अपार पुण्य का उदय, दूसरे एंगल से देखो तो खूब पाप का उदय, लेकिन अपना काम करते रहे। कौन? अरे भरत भवन की तरफ क्यों जाते हो, हम तो गुरुदेव के अनुयायी हैं। बोलो, उनके पाप का उदय जैसा था उसका चटान के लिए पाप का उदय हमारे आ जाए, गैर भाजा आत्महत्या करने जैसे मैं हम नहीं कर सकते बर्दाश्त। जरे जरे झंडे दिखा रहे हैं, न्यूज पेपरों में आ रहा है, रोजाना धरवर करके आ रहा है, यहाँ से निकाल दिया, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो उधर पसंद नहीं कर रहे हैं, इधर ये पसंद नहीं, इसका क्या लेना देना हमें? पाप का उदय पाप के उदय में आने वाला होगा, हम अपने स्वभाव में रहते हैं, हमें क्या लेना देना। पुण्य का उदय भी अपार, जय जयकार करने वाले हजारों लाखों अनुयायी, तो पुण्य के उदय से भी प्रभावित नहीं होते और पाप के उदय से भी प्रभावित नहीं होते। क्या पाप का उदय उनका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है और पुण्य के उदय से कुछ सुधरता नहीं है, क्योंकि ये अपने स्वभाव में रहते हैं भैया, अपने स्वभाव में पुण्य पाप कर्म के उदय की करती नहीं है। तुम क्या मान लेते हो, ये कर्म ही कर्म कर रहा है हमारा, ये समझ रखा है आपने, ये कर्म प्रकृतियां करती है, ये आपकी मान्यता काम से बच्चे की मान्यता है। ये बात 340 में कहेंगे, अभी तक हमें ऐसा फील होता है और देखो क्या क्या फील होता है। कर्म देते हैं, जितना दिया है सब कर्म का ही दिया हुआ। कोई कोई तो विद्वान व्याख्यान करते हुए ऐसा कहते हैं कि ये जो संपत्ति तुम्हारे को मिली है ये कर्म के बाद में तुम्हारा कॉन्टेक्ट है, कर्म देता है उसके साथ में डील है इस तरह की कर्म के बाद में। और कैसा कॉन्टेक्ट है कि ऐसा कॉन्टेक्ट है कि ये संपत्ति तेरी नहीं रही। कर्म क्या कहता है, ये जो संपत्ति है ये तेरी नहीं है, ये मैं तुझे दे रहा हूँ यूज में, ये काम में ले, वो आराम से उपयोग कर, लेकिन जिस दिन मुझे जरूरत होगी विदाउट प्री इंफॉर्मेशन क्या वापस ले जाऊंगा। तो जब मिली थी तब तो ऐसा कहना सोच गया, अरे बहुत मजा है, क्या मजा आ गया अपने पास में, तो क्या खास बात है। लेकिन ये उसको भूल गया, वो जो कॉन्टेक्ट उसके पास में हुआ था, अब कर्म के उदय नहीं किया था और कर्म का उदय ले गया, तो तू दुखी क्यों होता है? कर्म के उदय नहीं थी, कर्म का उदय लेकर के चला गया। अभी कह रहे हैं ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुल कुल स्वामी कह रहे हैं कर्म का उदय देता है और कर्म का उदय ले जाता है, ऐसा तू मानता है तेरी मान्यता जरूरी नहीं है। सुनने में तो ठीक अच्छी लगती है ना बात, सही है बात, बिल्कुल सही है। कर्म के उदय से मिला है, कर्म का उदय खत्म हो गया, बात चले गई। अब कर्म नहीं कर रहा है ऐसा, ये कह रहे हैं देखो कर्म करते 335 नंबर 335 दादा नंबर, कर्म करते हैं, कर्म देते हैं, कर्म हरते हैं, ये सब कर्म ही कर रहे हैं, सब कर्म ही हो रहा है, कर्म के द्वारा ही करा भरा है सब कुछ। तो कह रहे हैं यदि ये सत्य हो जाए बात तो फिर सारे के सारे आत्मा अपार सिद्ध हो जाएंगे। आत्मा ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कर्म का उद्देश्य कर्म दुखी करता है, कर्म दुखी करता है, तो आत्मा में निष्क्रिय तत्व की तरह पड़ा। अभी देखो और गलत बातें सही आ गई। नर वेद है महिला विलासी, 336 नंबर का था। नर वेद पुरुष वेद कर्म का हो गया आता है तो स्त्री के साथ में भोग करने का मन होता है, इच्छा होती, तो नर वेद पुरुष वेद नामक कर्म प्रकृति वो महिला को चाहता है और नार स्त्री वेद कर्म प्रकृति वो चाहे पुरुष को। जैसे कर्म प्रकृति का उदय आता है वैसा भाव होता हुआ दिखाई देता है। और ये कह रहे हैं कि साहब ये बात हमने परंपरा आचार्यों से खूब सुन रखी है, ऐसे कर्म की वजह से ऐसे भावों से स्त्री वेद का भाव आता है तो पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, पुरुष वेद का भाव आता है स्त्री के साथ में रमण करने की इच्छा होती है, नपुंसक वेद का उदय आता है दोनों के साथ में रमण करने की इच्छा होती है। उदय लेने पर स्थितियां हमने पढ़ रखी है परंपरा आचार्यों से। तो ये फिर आगे 336 नंबर खाता में क्या कहते हैं आगे, ये बात तो होगी 336 में पुरुष वेद और स्त्री वेद के संदर्भ में। 333 नंबर खाता में क्या कहते हैं कि हमारे ऐसे उपदेश में तो कोई भी व्यक्ति अब्रह्मचारी होगा ही नहीं। अब्रह्मचारी का मतलब कुछ भी सेवन करने वाला। यदि ऐसा है कर्म के उद्देश्य यदि ऐसा होता है, ऐसा माना जाए कर्म का उद्देश्य इस प्रकार का काम करवाता है, कर्म प्रकृतियों का यदि ये काम है, यदि आप ऐसा कहो तो कह रहे अब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्यों? क्योंकि कर्म क्या है, कर्म को हम क्या करें, मैं तो करता हूँ कर्म, कर्म को चाहता है। और इतना ही नहीं, और देखो किसी व्यक्ति को मारा, हमारे द्वारा कोई व्यक्ति मारा गया या किसी के द्वारा हम मारे गए, जो मारता है अन्य को या मारा जाए अन्य से, 338 नंबर का था, 338 नंबर क्या कहें, हमने किसी को मारा तो तुम मारने में सफल क्यों हो गए, क्योंकि परघात नामक कर्म प्रकृति का उदय था, परघात करने में समर्थ। शेर ने हिरण को फाड़ दिया तो शेर के द्वारा हिरण मारा गया, इसमें शेर के कौन सी कर्म प्रकृति काम करेगी, तो कहेंगे परघात नामक कर्म प्रकृति के उदय से ऐसे पंजे मिलते हैं, ऐसे नाखून मिलते हैं, ऐसे हिंसा भी वो करने में समर्थ होता है, ये परघात कर्म प्रकृति का ही काम है। 338 हो गई। अब 339 नंबर गाथा में कहते हैं तो इसका मतलब फिर ये हो गया, यदि ऐसा मानेंगे तो कि फिर कोई किसी को मार ही नहीं सकता, फिर मैं क्या करूँ। अच्छा बोलो, मेरे द्वारा किसी की हत्या हुई ऐसा कहें, तो हम कर रहे हैं कुछ और हमारे द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या हो गई तो हमने सामने वाले व्यक्ति को मारा या नहीं मारा, उनका मारा है कर्म लेंगे, हमने हमारे मारने से मरा है या उसके आयु कर्म पूरा होने से मरा है, प्रॉब्लम होगी। सर इसका मतलब हम तो किसी जीव को मारते ही नहीं, हम किसी जीव को मार ही नहीं सकते, सामने वाले का मरना और नहीं मरना वो आयु कर्म पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मारता ही नहीं, हिंसा का अभाव हो जाएगा। 339 नंबर ज्यादा में यही बात, कोई किसी को नहीं मारता है, परघात करता नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म मारे कर्म को, उसके ऐसा कर्म का उदय था वो मर गया पर इसके कर्म का उदय ऐसा था जो बच गया। बोलो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के केस में क्या हुआ, रामचंद्र जी लक्ष्मण को ये सूचना दी क्या, रामचंद्र जी मर गए, ये सूचना लक्ष्मण को मिली और ये सूचना दी कि आपस में कितना प्रेम है तो देखने के लिए। तो जब लक्ष्मण को ये सूचना मिली तो इस सूचना को सुनकर के वो मर गए। मैंने कहा रामचंद्र जी लक्ष्मण के जम को लेकर के घूमते रहे, तो मैं आपसे पूछता हूँ लक्ष्मण को किसने मारा, लक्ष्मण को किसने मारा, उन्होंने मारा नहीं। अच्छा अब लक्ष्मण के मरने की खबर रामचंद्र जी ने सुनी तो रामचंद्र जी तो नहीं मरे, राम के मरने की खबर लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण मर गया। अब लक्ष्मण वास्तव में मर गया ये खबर रामचंद्र जी को लगी तो रामचंद्र जी मरे के नहीं मरे, तो फिर कौन मरेगा और कौन नहीं मरेगा इसकी कौन नक्की करेगा? बोले जिसका आयु कर्म पूरा हो जाएगा वो मर जाएगा और जिसका आयु कर्म शेष होगा वो जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब मारने और जिंदा रखने का काम करना ये कर्म का काम है। ये तो हम तो कुछ करते नहीं, हम तो अकर्ता हो सिद्ध होंगे। 340 नंबर गाथा के अंदर ये बात थी। फिर 340 नंबर गाथा में कह रही थी जितनी बातें अभी तक तुमने पढ़ी है और जिन सारी बातों के संदर्भ में तुमने कह रहे थे कर्म 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 कितनी बातें कही थी। कर्म अध्ययन करता है, कर्म ज्ञान भी करता है, कर्म सुलाता है, कर्म जगाता है, कर्म सुखी करता है, कर्म दुखी करता है, कर्म मिथ्या भी करता है, कर्म अपने भी करता है। कर्म इस जीव को ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में, अधो लोक में ले जाता है। जितना भी सुबह होता हुआ दिखाई देता है कर्म भी करता है, कर्म देता है, कर्म ले लेता है, कर्म में हर लेता है। फिर कहा नर एक कर्म के उदय से स्त्री के कर्म में भोगने की इच्छा, पुरुष एक कर्म के उदय से अलग इच्छा। कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है, कोई कुशील सेवन भी नहीं करता है, कोई किसी को मारता भी नहीं है, कोई किसी की हिंसा भी नहीं करता है। क्या करे आदमी सब, ये सब कर्म ही कर रहे हैं। तो फिर हिंसा का भाव लगेगा कि नहीं लगेगा? झूठ का भाव लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? चोरी कुछ भी बढ़ जाएगी, पाप की सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हर जगह कर्म का भय क्या करूँ? स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्मा जिस पर लगाता है तो ऐसी अनिति तो संभव नहीं है। करते ये मानने का काम से नसी होती है उसके समान। मैंने बताया था मुझे काम से मती कैसे काम से मती सारा करना धर्म का प्रकृति के माध्यम पर और पुरुष शुद्ध है बस वो करता है, वो कुछ नहीं करता रहता है। ये कह रहे हैं भाई साहब सांख्य के उपदेश सम जो श्रवण प्रतिपादन करे मुनि होकर के भी कोई व्यक्ति इस तरह का प्रतिपादन कर रहा है तो कर्म की वजह से सारे इसके भाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कर्ता प्रकृति उनके यहाँ पर, उनके यहाँ पर सारी प्रकृति ही कर्ता हो जाएगी और आत्मा अकारक सिद्ध होगा। ये समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सब इसकी समस्या क्या है? मान लो करता आत्मा, आत्मा को अकर्ता मानने में क्या प्रॉब्लम है? क्या आत्मा को अकर्ता मानने में प्रॉब्लम नहीं है? फिर फल कौन भोगेगा? फिर सब काम जब काम प्रकृति ने किया है तो फल प्रकृति को ही भोगना चाहिए और प्रकृति तो फल भोगती नहीं है क्योंकि प्रकृति अचेतन है। फल भोगता है जीव। अब आप कह रहे हो जीव अकर्ता है, तो जीव अकर्ता है तो फल क्यों भोगता है? तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि जीव ही कर्म करता है। किसका? जड़ का कर्ता जीव नहीं है, कर्म का कर्ता जीव नहीं है। लेकिन कर्म के उदय का निमित्त बनने पर जो परिणाम होते हैं उन परिणामों का कर्ता अज्ञान अवस्था में जीव ही है। ज्ञान हो जाने पर, वेद विज्ञान सम्य ज्ञान हो जाने पर वो उसका कर्ता भी नहीं है। ज्ञान जी उसका कर्ता नहीं है, राधा जी का कर्ता। ज्ञानी जी राधा जी होते हैं क्या? नित्यात्म जन्म राग द्वेषादि ज्ञानी के होते नहीं, तो जो होते हैं उसका कर्ता ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञानी जी तो चारित्र मोह की कमजोरी से जो राग द्वेष होते हुए दिखाई देते हैं, यदि प्रवचन साल की शैली में बात की जाए तो उसका कर्ता ज्ञानी ही है। उस राग का कर्ता जो पर्याय में चारित्र मोह की कमजोरी से राधा जी उत्पन्न हुए उन राधा जी का कर्ता वो ज्ञानी है। लेकिन वो उनका कर्ता अपने आप को मानता नहीं, उसका राग के प्रति अपनापन नहीं है, उसका अपनापन 43 रूप जहर के साथ में है। इसलिए ज्ञानी जीव राग का अकर्ता है और अज्ञानी जीव उसका कर्ता है। अरे देखो क्या कहते हैं, अभी इतनी बात कहने के बाद में कोई चीज के यदि ये बात कहे कैसा है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमारे यहाँ अधिकांश है ना आत्मा इन सब का तो अकर्ता है, ये सारे काम तो प्रकृति कर रही है। फिर का आत्मा क्या करता है? फिर आत्मा आत्मा को करता है। 340 नंबर गाथा में क्या कह रही है? आत्मा पर को तो नहीं करता लेकिन आत्मा आत्मा को करता है, ऐसा मानते तो कह रहे तुम्हारा ये मानना भी निश्चय है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पर को नहीं करता था, पैदा करता करता नहीं था, कर्म का कर्ता करता नहीं था और राग का कर्ता करता भी हम नहीं मानते, आत्मा को कर्म का कर्ता मानते हैं। और ज्यादा तुम यदि अनेकान से निकलना चाहते हो तो हम ये कह देते हैं कि आत्मा करता है, लेकिन आत्मा आत्मा का ही करता है। पॉइंट होने आ रहा है, इसका क्या है? ये सारी बातें तो मेरी बिल्कुल सही है, तुम धर्म के अंत की बात मत करो, ये जितनी बातें कही है सब सही है। तो फिर अनेकान कहते घटित कर आत्मा करता भी तो होना चाहिए ना, क्या आत्मा आत्मा का करता है? कुल कुल स्वामी ये कह रहे हैं आत्मा आत्मा का करता है, क्या पागल होने की बात कर रहे? मिथ्या है तुम्हारी ये बात, जरा कहते मिथ्या है तो उसके मिथ्या बने को सिद्ध किया आगामी तीन भाषाओं में 342 343 और 344। देखो क्या कहते हैं कि साहब आत्मा आत्मा को करता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो 342 नंबर भाषा में कहते हैं आत्मा आत्मा को करे कैसे? आत्मा को नित्य है, नित्यत्व के और कर्तृत्व के दोनों के परस्पर में विरोध आता है। जो वस्तु नित्य है उसमें कर्तृत्व नहीं हो सकता, और जहाँ क्रिया है वो नित्य नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? हमने कहा कि ये चीज बनी बनाई है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि बनी बनाई तो है लेकिन इसको मैंने बनाया है, ये पागल है। बनी बनाई है और दूसरे कह रहा मैंने बनाया है, ये दोनों बातें इस बात कैसे हो सकती है? आत्मा तो नित्य है इसलिए आत्मा आत्मा को करे ये बात बनती है। 342 आत्मा नित्य है और कैसा है? असंख्य प्रदूषमय है, ना तो उसे इससे हीन किया जा सकता है और ना अधिक किया जा सकता है। एक बात और देखो, ऐसा है आत्मा नित्य तो है, ठीक है ना? अब यदि कदाचित आप ये कहो कि नित्य तो है लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो इसलिए मैंने आत्मा नित्य तो है, मैंने इसको पहले से थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, समझे? तुमने कुछ किया, तो ये आत्मा असंख्यात प्रदेश है, वो नित्य तो है, उससे असंख्यात प्रदेशों को भी न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है, तो तुम आत्मा से कर्ता कैसे हो सकते? आत्मा आत्मा का कर्ता कैसे हो? यदि तुम राधा जी के कर्तापन को स्वीकार करो अज्ञान अवस्था में और ज्ञान अवस्था में अकर्तृत्व स्वीकार करो, तब तो ही अनेकान सिद्ध होता है, बात समझ में आती है। लेकिन तुम आत्मा का कर्ता बना कहो तो आत्मा को कैसे करोगे? देखो 342 नंबर गाथा में क्या था, क्योंकि आत्मा नित्य है अत एव असंख्य प्रदेश है, ना उसे इससे हीन अथवा अधिक करना शक्य है। संकोच विस्तार की सामर्थ्य है जैसी आत्मा में, लेकिन लोक प्रमाण असंख्या प्रदेश है ना। देखो नीचे 342 में इसी बात को बतलाया आगे, विस्तार से भी जीव का जीवत्व लोक प्रमाण है, कोई कहता बड़ा तो होता ही है, विस्तार तो होता ही आत्मा का, चले लोक प्रमाण नहीं होगा, विस्तार इससे ज्यादा होता नहीं। केवली समुद्रघात के समय लोक पूरण केवली समुद्रघात के समय आत्मा के एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर फैल जाते हैं। ना हुए ही ना भी कभी कैसे करे ये द्रव्य को, ये आत्मा आत्मा को कैसे करे जब असंख्यात प्रदेशों को कम ज्यादा नहीं कर सकता? निश्चय से ये आत्मा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही है, ये आत्मा का स्वरूप है, ये मूल स्वरूप बता रहे आत्मा का। बातें बहुत हो सकती है इसके संदर्भ में, अभी समय हो गया है अपना, माने ये मूल बात कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। अब जो आत्मा का मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप में करने धरने के लिए कुछ नहीं है, 43 ध्रुव जाए भगवान आत्मा में करने धरने के लिए कुछ नहीं है, तो तूने कुछ किया है ये बात बनती नहीं। जिसका ये बात यदि माने रहे जाए भाव ज्ञान स्वभाव में एक तो भी आत्मा स्वयं ही आत्मा को करे ये बात नहीं बनती। तो इस तरह से ये सब कर्तृत्व के संदर्भ में जो काम से बदले जैसी मान्यता थी उसका यहाँ निषेध किया है, और 205 नंबर का एक कलश और दिया है। इस कलश ने इसी बात को पुनः दोहराया है, इस बात निष्कर्ष करूँ अपन कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और आगे जो चर्चा चलने वाली है वो कहने वाले हैं कि भैया सांख्यों जैसी मान्यता तो खोटी मान्यता है ही, लेकिन यदि तुम बौद्धों जैसी मान्यता रखोगे क्या वो भी खोटी मान्यता है? अभी बौद्ध कहाँ से आ गए, कहाँ सांख्य है, कहाँ बौद्ध है, कहाँ उन जाए, उनके न्याय जैनियों की दबाव सांख्य बौद्ध कहाँ से आ गए? हमारे देवियों की सभा में पता है कि न्याय न्याय की भाषा है। न्याय प्रचंड ताम से हम ताम से मतलब लोगों को नहीं समझा रहे, हम बौद्धों को नहीं समझा रहे, प्रचंड बौद्ध उनको समझा रहे। न्याय शास्त्रों की भाषा है ये प्रचंड बौद्ध क्या होते हैं, ये प्रचंड ताम के क्या होते हैं। जैन कुल में जन्म लेकर के भी अपने आप को जैन स्वीकार करते हुए भी जिनकी मान्यता ताम से मतियों जैसी है, वे ताम के कुल में जन्म तो नहीं लिए लेकिन है काम से जैसे, उनको प्रचंड काम से कहकर के पुकारते हैं। आचार्य कुंड कुंड स्वामी कह रहे हैं मेरे सामने जैन कुलोत्पन्न लोग बैठे हैं लेकिन मैं जब इनका एक्सरे फोटोग्राफी करके देखता हूँ तो मुझे इन्हें प्रचंड काम से और बहुत दिखाई देती है। तो उस मान्यता का खंडन उन्होंने यहाँ किया है। कल अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। कौन सा गुरुदेव का और दादा का नाम ले रहा था मैं। चालू नहीं गए
कल सुबह क्षेत्र इनोवेशन के बाद एक थोड़ा ट्रेनिंग के लिए संजीव जी का होगा आपको प्रवचन और वेंकट जी का प्रवचन जो सुबह का उत्साह को साढ़े सात बजे से साढ़े सात बजे तक होगा साढ़े सात बजे अभी जी आपका प्रवचन जो पौने सात से साढ़े सात का हुआ था
कल दोपहर को दोनों का अंतिम लेक्चर हो जाना होते
हैं
और कल शाम को नया गोष्ठी का
प्रोग्राम नहीं होगा, वो हमारा पद कैंसिल कर देते
हैं,
कल शाम को
दो प्रवचन रहेंगे और दो प्रवचन के बाद में आप लोग जो सुना है उसका चिंतन करना।
मतलब का प्रोग्राम में
हाँ